शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
शांति
शांति।
ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। आज के बाबा के मधुर महावाक्य धारणा युक्त है। आज बाबा ने विशेष कहा, बच्चे जुआ नहीं खेलना है। दुनिया के अंदर तो आजकल जुए की लत बहुत लग गई है, क्योंकि मोबाइल में ही खेलते हैं। मोबाइल में ही जुआ आ गया तो जुए की लत कईयों को लग गई। सहज पैसा कमाने का तरीका समझते हैं। तो बाबा कहते, जब हारते हैं तो कितना दुख होता है। तो इसलिए तुम बच्चों को जुआ नहीं खेलना है। बाबा ने बेहद का खेल खेलना सिखाया है। इस बेहद के खेल में सदा मस्त रहो। बाकी ये हद का जो खेल है, खेलो 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 करते रहते हैं, तो उसमें जो हारता है तो दुख होता है, जो जीतता है उसको खुशी होती है। तो बाबा कहे कि तुम बच्चे जब बेहद के खेल में रहते हो, सदा खुश रहो, हारने की बात ही नहीं है। अभी हमारी जीत ही जीत है। बाबा कहे, तुम दैवी घराने में जा रहे हो, दैवी धर्म श्रेष्ठ, दैवी कर्म श्रेष्ठ बनो। जुआ खेलना ये भी तो एक भ्रष्ट कर्म ही है, तो ऐसा भ्रष्ट कर्म कभी नहीं खेलना है। हमें श्रेष्ठ दुनिया में जाना है तो दैवी धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन आया? तो बाबा कहे, कौन सा दिन आया है? जब तुम्हारी सुनवाई होती है, हर एक बात की अच्छी तरह से सुनवाई होती है, और जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। हमारे जैसा उत्तम और कोई नहीं बनता। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है, जुआ। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ। आज की मुरली से पहले गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहां फिर है डबल ओम शांति, एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की, शिव बाबा भी कहते ओम शांति, दूसरा यह दादा भी कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। दादी जानकी कहती थी 3 बार ओम शांति, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, शांति स्थापन करनी है। तो आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहां इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं, यह बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है, उनसे सुनवाई होती है। तो बाबा कहते दुखियों की सुनवाई, कहते हैं ना दुखियों का दुख दूर करो, हमारे ऊपर दुख हर करके सुख दो। कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं, बाप है भी गरीब निवास, इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल शाहूकार थे, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। कहाँ है, जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है, हरेक का 100% निश्चय नहीं होता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, शिव बाबा है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे कि बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तुम शाहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा शाहूकार फिर कौन है। बाबा कहते हैं राम से ज्यादा शाहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है, ऐसे विश्व के मालिक बनाते जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु होती नहीं है। जिनके लिए पाप करना पड़े, बहुत सुंदर सूक्ष्म में बाबा ने इशारा दिया कि मनुष्य पाप क्यों करता है, अप्राप्ति महसूस होती है इसलिए पाप करता है, ये चाहिए चाहिए तो फिर उसके लिए तो दाम लगता है, तो दाम के लिए फिर कुछ ना कुछ पाप जरूर करते रहते हैं। वहां पाप का नाम ही नहीं है। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प आधा कल्प है असुरी राज्य। असुर अर्थात, असुर के डेफिनेशन आज बाबा देते, असुर अर्थात क्या कहेंगे, असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, जिनमें देह अभिमान है, पांच विकार है। इसलिए दिखाते हैं ना, रावण को भी था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों में भी कभी कभी क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास, तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भूल जाते हैं। हम बाबा कहे तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं कौन सी, बाबा आकर पहली पहली मत कौन सी देते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो, ये अक्षर याद किया तो भी बेड़ा पार है। देही अभिमानी बनने का बाबा कहे, ये याद किया तो भी धीरे धीरे बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम, बच्चे जानते हैं, शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। हमारा बाप ही हमें पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है, तो बाबा कहे पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, बाबा कहे भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। आजकल तो दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े शहर बन गए हैं जुआ खाना के, दुनिया में प्रख्यात है। अमेरिका में लास वेगस पूरा शहर देखो तो जुए के लिए ही खास लोग जाते हैं, और दूसरा यहाँ मकाओ, इंडिया में गोवा, गोवा में बड़े कसीनो हैं, तो जुए खेलने के लिए ही खास जाते हैं। यह भी दुख देते हैं, इसलिए बाबा उसको भ्रष्ट कर्म कहते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी, है ना। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। माया से इतना हारे हैं, अब बाबा आकर के हमें बेहद की जीत पहनाते हैं। पांच विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है, माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है, अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। है कोई यहाँ जो मोबाइल पर भी खेलते हो? नहीं। अभी कोई ने समाचार सुनाया था कि एक पिता ने मिडिल क्लास फैमिली का भाई था, उसने अपने बच्चे की शादी के लिए 40 लाख धीरे 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 करके जमा किया। अब बच्चा एक ही बेटा एक ही बेटी थी, तो बेटे को वो मोबाइल से बैंकिंग आदि कराते थे कि कर लो बैंकिंग, तो बच्चे को पासवर्ड मालूम था, तो जैसे ही मोबाइल पर आता है कि खेलो रमी रमी खेलो रमी खेलो, तो उसको लगा कि मैं पिताजी को ये बहन की शादी के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैं भी करूं। तो उसमें ऐसा होता होगा कि एक दो बार जीतते हैं ताकि लोगों को प्रलोभन लगता है, तो प्रलोभन उसको लग गया कि देखो मैं तो जीता, एक दो बार जीता तो उसको लगा कि और खेलता हूं और जमा कर देता हूं। अरे फिर हारता गया और बैंक से पैसा कटता गया 40 लाख चला गया उसका। जब 40 लाख चला गया और फिर कहा भी बैंक में पैसा नहीं है दूसरा पैसा दो, तो तब उसको महसूस हुआ अरे 40 लाख चला गया, अब बाप को क्या जवाब दूंगा, तो सुसाइड कर दिया। और पिताजी को क्षमा का ये डाल करके कि भाई माफ करना, मैंने सारा पैसा मैंने सोचा मैं बढ़ा करके दूं, लेकिन मैं तो हार गया। अब देखो घर में क्या हालत हुई होंगी उस माँ बाप की, जिसने इतना पाई पाई जमा करके 40 लाख किया और वो एक धक में जैसे चला जाए। तो इसीलिए बाबा कहे अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। आजकल इतना मना मोबाइल के अंदर मनुष्य जब घुस जाता है तो उसको पता ही नहीं लगता है। इसीलिए देखो शास्त्रों में भी उस चीज का गायन है कि शकुनी क्या करता था, जुआ खेलने में ही तो माहिर था और शुरू में जिताता था ताकि लोगों को प्रलोभन लगे, पांडवों को भी पहले पहले जिताया, फिर बाद में सब खाली कर देते। इसलिए हम कहते आज का शकुनी कौन है, मोबाइल। आज का शकुनी है मोबाइल, हर एक के हाथ में है। तो बाबा कहे अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, कराने वाला बाप समर्थ है। ये भी याद रहे कि इस बेहद की जीत में हम जीतने वाले ही है, क्यों? क्योंकि कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। बाबा सावधान करते हैं, ये मत समझो कि खाली बाबा हमारा सर्वशक्तिमान है, लेकिन रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य है, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब ये हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खेवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, पावन भारत हमारा शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम विषालय में रहते हो, विष से भरा आलय है, तो विषालय में रहते हो, तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहां इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूं, सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सदगति ज्ञान से होती है, सदगति ज्ञान से होती है, कोई मनुष्य करने वाला नहीं है। सर्वतः सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है, ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहां सुनकर बाहर गए तो क्या होगा, यहां की यहां रही, वहां की वहां रही, है ना। बहुत है जो यहां सुनकर बाहर गए तो यहां की यहां रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं, क्या फील करते हैं? हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता, आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। सुनवाई होती है किस किस चीज का, आखिर वह दिन आया जब सुनवाई होती है, जब पुरुषोत्तम संगम युग आया है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का, और जब बाप आए हैं पढ़ाने। तो आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर क्या करना है, चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना। कलयुग का अंत आ गया है, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर फिर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा नहीं सकता। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, है ना, तो पहले तो शिव बाबा को जाना चाहिए, फिर उसकी बारात भी जाएंगे। शंकर की बारात होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है किस लिए? लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित है। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, सिर्फ तुम्हारी सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं और देवता धर्म प्रायलोक तो अभी और सब धर्म वाले हैं, डीटीज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। थूर को निकाल दिया और बाकी टालियों पर सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर देवता धर्म था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। फिर बाबा कहते रिपीट होगा, बाप कहते मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया से पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्पान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। क्यों कहते हैं ये मालूम नहीं। नाम तो अच्छा है ना, श्याम सुंदर। राधे और कृष्ण यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है सागर के बच्चे जल मरे। कहते ना सागर के बच्चे जल मरे। किस पर जल मरे? काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर क्या कर रहे हैं? शीतल जल डाल रहे हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम शाहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न की वैल्यू क्या है? यह एक एक ज्ञान रत्न कितने के हैं? लाखों के हैं, लाखों रुपए के हैं। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से क्या बन जाते हो? तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्म पति बनते हो। पद्म में कितने होते हैं पता है? लाख करोड़, फिर अरब खरब, फिर नील, फिर शंख और फिर पद्म। 17 जीरो है, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते थे हे बम बम महादेव भर दो झोली, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे और ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। 16 एक ही है, लेकिन 84 जन्म तीनों के लिए कहेंगे। विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे और ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहेंगे। बाप पैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, अभी कोई ये निकली है, कोई नाटक बनाया तो ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई हो रही है। इस बात की लड़ाई है तो विष्णु कहता है तू मेरी नाभि कमल से निकला इसलिए मैं तेरे से बड़ा है। हाँ, तो वो कहता है मैं सृष्टि का सर्जन करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूं। तो दोनों की लड़ाई होते होते फिर दोनों शंकर के पास पहुंचे। दुनिया में तो शंकर ही दिखाएंगे, शिव जी के पास पहुंचे। फिर दोनों का समाधान किया गया। तो बाबा कहे ब्रह्मा और विष्णु का प्यार पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बने, अब फिर देवता बनते हो। पाठ सारा यहां बचता है, वैकुंठ के खेल पाल देखते हो। यहां तो वैकुंठ नहीं है, मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या। बाबा कहे साक्षात्कार किया, कृष्ण के साथ डांस किया, सो क्या। स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो, हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। विराट रूप किसको कहा जाता है दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर ये सब इस संगम के नाम है। अकासुर बकासुर सब संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए क्या करता हूं, साथ में ले जाता हूं। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है इस बात का, दोनों को हक है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को इस बात का, बच्चे बच्चे कहने का, है ना, बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं, बाप भी दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों समझते हो ना। हम आत्मा यहां आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहां ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, कौन सा? पक्का हो गया, आखिरन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की थी। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो ना, जिसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो क्या समझना चाहिए? तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, इसीलिए ज्ञान भी समझ नहीं पाता है ना। पीछे आया है, यहां भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति की है तो थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है बाबा, भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल समझाते हैं। बाबा कहे, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यात्यार कौन देता है और नमस्ते कौन करता है? मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा कहते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो याद प्यार कौन देता, नमस्ते कौन करता है? याद प्यार दोनों देते हैं, बाप दादा मात पिता दोनों ही देते हैं बच्चों को, लेकिन नमस्ते सिर्फ शिव बाबा करता है ना। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो वहां ब्रह्मा बाबा नमस्ते नहीं करते हैं। याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते जो है बाप दादा दोनों करते हैं, नमस्ते सिर्फ शिव बाबा करते हैं। निरहंकारी बाबा है जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। पहले खुद धारण करना है फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रदान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि हूली हंस पव, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो, सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही कौन हो गए, होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण की बातों की वृत्ति से बदल देंगे। किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ स्नेह की होगी, श्रेष्ठ शुभ और स्नेह की होगी। आज का स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो। कैसे? प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे, आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। आज का व्यक्ति इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। उसके अंतर्गत कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती है, कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती है और कोई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। कोई प्रभु प्रेम में लीन होना चाहता है, कोई ज्योति में ही लीन होना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध में लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति अनुसार संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे, लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ जाएंगे। अच्छा, आज के दादी की विशेषताएं हैं, समय की वार्निंग को सुनते हुए, समय की वार्निंग को सुनते हुए सर्व विघ्नों से परे अशरीरी व आत्म अभिमानी स्थिति, समय की वार्निंग को सुनते हुए सर्व विघ्नों से परे अशरीरी व आत्म अभिमानी स्थिति। दादी जी कहती कि मुझे तो हर घड़ी समय की वार्निंग सुनाई देती है, अभी जो समय चल रहा है यह हमें अंतिम घड़ियों की वार्निंग दे रहा है, सूक्ष्म में बार बार ये वाइब्रेशन आते हैं कि अभी यह अंतिम पुराने शरीर व यह पुरानी दुनिया भी कब तक? इसलिए मैं साइलेंस की शक्ति से देह के भान को भूलने का अभ्यास करती हूं। अब हम सबको अंतर्मुखी बनने का, डेड साइलेंस में रहने का विशेष अटेंशन रखना है, अंतर्मुखी होने का और डेड साइलेंस का अभ्यास करने से। इसमें स्वयं की स्थिति में, संगठन में अथवा यज्ञ में जो भी छोटे मोटे विघ्न आते हैं, वातावरण होता, वह समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सब बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा दिवस है। सतगुरुवार अमृत वेले से ही हम बच्चे सतगुरु से मीठी मीठी रूहान करते हैं और बाबा से प्यार भरे मन की बातें और बाबा ने सब बच्चों के प्यार की सब बातों को रूहान को ध्यान से सुनते हैं और आज के दिन वैसे तो रोज करते ही हैं, लेकिन आज के दिन तो ऐसा लगता है कि हम बाबा के सामने हैं, बाबा हमारे सामने हैं, बाबा ही हमारी पालना कर रहे हैं और बाबा ही सब बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम सब बाबा को मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे। निमित्त मात्र तो एक सामने, एक या दो सामने होते हैं, लेकिन बाबा हमेशा चाहते हैं कि भोग के टाइम सब बच्चे बाबा के सामने रहे, कोई भी मिस नहीं करे, बाबा के पास वतन में पहुंचे और बाबा को अपने मन की खुशियों से ही बाबा से मिले और बाबा को भोग स्वीकार कराए। तो आज हम सब बाबा के पास जाएंगे। कौन जाएंगे बाबा के पास? सब जाएंगे ना, है? बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा। एक लाइन भाइयों की उस साइड में होगी और दो लाइनें बट्टी की बहनें, एक लाइन बट्टी की बहनों की यहाँ पर होगी और एक लाइन यहाँ जो दूसरा कैमरा है वहां पर होगी और दो लाइनें अन्य बहनों की होगी अमृत पिलाने के लिए। और अमृत पिलाने के लिए विशेष बहादुरगढ़ की दो मुख्य टीचर बहनें भी स्टेज पर आएंगी और सबको अमृत पिलाएंगी, और इशिता बहन भी और मधुबन की अपनी मंजू बहन, त्रिवेणी बहन तो होती हैं, तो इसलिए अमृत पिलाएंगी। और अभी हमारे बीच में काफी सारे भाई बहने भी आए हुए हैं। जो अहमदाबाद से है वो हाथ खड़ा करें। अहमदाबाद का ग्रुप जो भोग के लिए आए हैं, पीछे है क्या, पहुंचे नहीं है? आगे आ जाओ, खाली है, अहमदाबाद वाले आगे आ जाओ। हाँ आगे आओ, आगे टीचर बहने, हाँ माता है जगह पीछे, दूसरी लाइन इधर आ जाओ, भाइयों की तरफ आ जाओ आगे, हाँ दूसरी लाइन में आ जाओ। अच्छा ठीक है, देखो आज के दिन केवल तो मैं अहमदाबाद का नाम ले रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे भी भाई बहने आए हैं जो भोग स्वीकार कराने के लिए आए हैं। आप सबकी तरफ से बाबा को विशेष याद दिया जाएगा। अहमदाबाद महादेव नगर से जो कनेक्टिंग जो अन्य सेंटर हैं वहाँ से जो हमारे भाई आए हैं बाबा को बहुत लाडला, और नाम क्या बोला था, हाँ बहुत लाडला, बहुत सेवा करते पूरा का पूरा परिवार। आगे आ जाओ इधर सामने हैं, दोनों बहनें आ जाओ, तीसरी भी आ गई हैं, ठीक है ओके ठीक है। हम सब बाबा को और भी हैं, गामदेवी से आए हैं, कई स्थानों से आए हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकते हैं, बहुत भाई बहने आए हैं यहाँ पर, सबकी बाबा के पास याद देंगे, लेकिन याद के साथ साथ आप सबको भी बाबा के पास पहुँचना है और बाबा को भोग स्वीकार कराना है। और अभी हम सब चलते हैं बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। फिर से बता रहे हैं कि भोग के संदेश के बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, दो लाइनें बट्टी की बहनों की टीचर्स और बट्टी की टीचर्स और बहनों की, एक लाइन यहाँ पर होगी, एक लाइन दूसरे कैमरा की तरफ होगी, दो लाइनें अन्य बहनों की उस साइड में होंगी। और अमृत पीते समय सबको लाइन में आना है और 5-10 मिनट में ही सबको मिल जाता है, कोई आगे नहीं बढ़े, कोई बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में अमृत को स्वीकार करना है। ओम शांति।
ज्योतिर्मय देव
जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों को साथ लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज वतन में अलग अलग प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखती हूँ बहुत बड़ा विशाल हॉल की तरह से स्थान था, चारों तरफ डेकोरेशन, और उसी स्थान पर कहीं पर छोटे छोटे मॉडल, कहीं पर बहुत सुंदर सुंदर पेपर्स पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कहीं पर कुछ ऐसे पैक करके रखा हुआ था, और चारों तरफ लाइट की किरणों से वो जगमगा रहे थे। और दूसरी तरफ दूरी पर देख रही थी कि भक्ति का विस्तार और इष्ट देव की मूर्तियां और भक्तों की लगन, और कैसे वो हाथ जोड़ करके वहां खड़े हैं लाइन में कोई न कोई प्रकार की आशा को लेकर। कुछ सेकंड के बाद देखते हैं बाबा दूर से आए हैं, तो बाबा मेरे पास आकर के पहले मेरे को दृष्टि न देकर के बाबा पहले भक्तों को देख रहे थे, और बहुत फिर वो जो दूसरा हॉल सजा हुआ था उस पर देख रहे थे। फिर बाबा ने कई बार हॉल की सजावट, हॉल के अंदर जो चीजें रखी थी, एक एक चीज को भी देखते, फिर वो सामने जो भक्ति का स्वरूप था उसकी ओर देखते। बाबा बहुत ध्यान से इसी चीजों को देखते हुए देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप अपने बच्चों को और भक्तों के जो लगन है उसको देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो आज के दिन और कुछ दिन भगत अपने इष्ट देव के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए और कोई न कोई प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, और वो कुछ न कुछ अंशी मात्र प्राप्त करना चाहते हैं। और बाबा इधर जो हॉल में सजी हुई चीजें थी, बाबा ने कहा ये सिद्धि स्वरूप बच्चे जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं वो अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लगन भी बहुत है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए भी बहुत कुछ प्लान भी बना रहे हैं। तो जैसे बाबा उनको देख रहे थे तो जो मॉडल छोटे छोटे बने हुए थे वो धीरे धीरे शेक करने लगे, और जो छोटी छोटी और चीजें रखी थी वो कभी ऊपर की ओर जाती, कभी दाएं की ओर जाती, कभी बाएं जाती है। बाबा ने कहा अभी भी बाबा को बच्चों के ऊपर ये बार बार विचार चलता है कि बच्चे कब अपने संपन्न स्वरूप को सामने रख करके उस स्थिति पर आएंगे और उस स्थिति के द्वारा भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बाबा ने कहा एक तरफ तो बाप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत लगन से कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई न कोई बात की दृढ़ता की कमी के कारण जो उनकी सब प्रत्यक्षता के स्वरूप है वो उसमें ढीला होता है और वो शेक करने लगते हैं, तो भक्तों को भी थोड़ा सा अनुभव होने में उनको थोड़ा ऐसा लगता है कब हमारी पुकार सुनेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही, अभी भी बच्चे कई बातों के बाहरी रूप मान शान भय इन बातों में आकर के जो स्थिति प्राप्त की है, बाप ने बच्चों को जिस स्टेज पर बिठाया है उस स्टेज से उतर के नीचे आ जाते हैं। तो फिर उसी समय क्या देखती हूँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा के सामने थे और बाबा बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि भी दे रहे थे और बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसा सुंदर सा तख्त दिया और तख्त पर बाबा ने सब बच्चों को बिठाया और बाबा ने ऐसे हाथ किया वरदानी हाथ, हर एक बच्चे का सजा सजाया रूप दिखाई दे रहा था जैसे कि वो ईष्ट हो, तो ईष्ट के रूप में देवी देवता के रूप में और दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है, बहुत कम थे जो अपनी स्व स्थिति पर बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा, बाबा हर समय हर बच्चे को स्व स्थिति की स्टेज पर बिठाते हैं और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने आसन से नीचे न आए और अपने उस स्वरूप के द्वारा भक्तों को साक्षात्कार कराए। फिर बाबा ने कहा, देखो आपका संपन्न स्वरूप सिद्धि स्वरूप है, वरदाता दाता का स्वरूप है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यही समय है जो भक्ति में आपका यादगार होता है। लेकिन अब समय के महत्व को जानकर अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के बाप के द्वारा दिए हुए वरदानों को सबके सामने उनको भी अनुभव कराना है, अंजलि देनी है। फिर तो थोड़ी देर के बाद सब बच्चे जो है वो सजे सजाए स्वरूप में ईष्ट रूप में थे और उनके द्वारा लाइट की किरणों से भक्तों पर एक न एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, यही समय है, ऐसी स्थिति बनानी है और बाप चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता के कार्य की जो बच्चों को जिम्मेवारी दी है वो बच्चे उसे अच्छी तरह से करें। तो बाबा ने फिर उनको वही स्वरूप दिखाते हुए उस स्मृति को दिलाते हुए कहा, बच्चे उस स्मृति के अंदर सदा टिके रहे। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने उन सब बच्चों को सभी को जैसे वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा, भक्तों के लिए इष्ट हैं और बच्चे मेरे लिए पूर्वज तो क्या सारे विश्व के सामने महान हैं, तो आज ऐसे महान बच्चों को बाबा अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने ऐसे हाथ किया तो बाबा के हाथ से एक छोटा सा स्लोगन पहुंचा। उस स्लोगन पर लिखा हुआ था, बाप समान संपन्न सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने कहा, जब संपन्न बनेंगे तब सर्व प्राप्तियों से संपन्न और दूसरों को भी ऐसा अनुभव करा सकेंगे। फिर तो उसके बाद मैंने बाबा को जिन जिन के भोग थे उनके निमित्त याद दिया। बाबा ने सबको वहां इमर्ज करके बाबा के सामने जैसे एक गुलदस्ता बैठा हो अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहे थे और बाबा ने सबको दृष्टि से वरदान दिए, याद दिया और उनके जो शुभ संकल्प थे उसके निमित्त भी बाबा ने सबको कुछ सुनाया, फिर मैं वापिस आए। ओम शांति।